नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज हम आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। हमारे इस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। बच्चों, आज हम बचे हुए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे राजस्थान में कैसे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। और बच्चों, हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 123 से। तो हमें देखना है कि यहाँ की भौगोलिक अवस्था को यानी राजस्थान को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको हम इंग्लिश में वेस्टर्न डेजर्ट कह सकते हैं। दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसको हम इंग्लिश में सेमी डेजर्ट कह सकते हैं। अरावली प्रदेश यानी वो रीजन जहाँ पर अरावली का एक्सपेंशन है। चौथा है पूर्वी मैदान प्रदेश यानी ईस्टर्न मैदान, ईस्टर्न प्लेन्स। पांचवा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, सदर्न ईस्टर्न प्लेट्यूज। तो बच्चों, चलिए हम पहले लैंडफॉर्म यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ते हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिए पेज नंबर 123 के पॉइंट अ पर, जिसमें लिखा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। इसमें लिखा है यह आकार में सबसे बड़ा प्रदेश है। इसे 3 समांतर पेटियों मरुस्थली, बांगर व राही के रूप में बांट सकते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। मरुस्थली में बालुका स्तूपों की अधिकता, बांगर विस्तृत रेतीली मिट्टी के मैदान व राही बाढ़ के मैदान हैं, जो कि छोटी नदियों से बने हैं। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा बनाती है। यहाँ बालू की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में घोरे कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर के आने से यहाँ की पारिस्थितिकीय में बदलाव आया है। तो बच्चों, अभी हमने जिस रीजन के बारे में रीड किया वो डेजर्ट का रीजन है, और जनरली हमारे राजस्थान के मैप में ये पश्चिमी दिशा में पाया जाता है। इसका मतलब कि आप अगर राजस्थान का मैप देखेंगे तो आपको वेस्टर्न पार्ट में ये क्षेत्र मिलेगा। आपकी सुविधा के लिए चलिए एक बार हम पेज नंबर 122 पर दिए गए मैप को पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों एक बार अगर हमने इस मैप को समझ लिया तो इस राजस्थान के सभी क्षेत्रों को समझने में हमें आसानी होगी। तो आप फटाफट से पेज नंबर 122 ओपन करिए और इसमें दिया गया राजस्थान भौतिक प्रदेश पर ध्यान दीजिए। बच्चों, इस मैप के नीचे हमें 5 बॉक्सेस दिए हैं। पहले बॉक्स पर ध्यान से देखिए, पीच कलर के कलर से इसको फिल किया गया है इस बॉक्स को, और इसके सामने लिखा है पश्चिमी शुष्क प्रदेश यानी वो रीजन जो कि वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और ये शुष्क है यानी कि ड्राई है। तो आप ध्यान से देखिए कि हमारे राजस्थान के जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां से ये क्षेत्र शुरू होता है और फिर आ करके पंजाब से लगा हुआ गुजरात के बॉर्डर तक खत्म हो जाता है। यानी कि राजस्थान का जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पोर्शन है वो कवर होता है पश्चिमी शुष्क प्रदेश से। इसके बाद सेकेंड बॉक्स पर ध्यान दीजिए जो है स्काई ब्लू कलर से, और इसके सामने लिखा है अर्ध शुष्क प्रदेश यानी कि वो क्षेत्र जहां पर सेमी ड्राई रीजन पाया जाता है। तो बच्चों ये शुरू होता है हरियाणा के बॉर्डर से और फिर साउथ में आते आते तक इसका जो क्षेत्रफल है यानी अर्ध शुष्क प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो कम हो जाता है। इसको आप ध्यान से देखिए। इसके बाद हमें तीसरे बॉक्स में अरावली प्रदेश करके पॉइंट मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो अरावली प्रदेश हमारे राजस्थान के बीचों बीच पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो दिल्ली का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इससे टच करता है। फिर गुजरात लिखा हुआ क्षेत्र इसके साउथ में आता है। तो आप अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है जिसको हम अरावली प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद बच्चों हमें लाइट ग्रीन कलर से लिखा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका मतलब कि हमारे राजस्थान के ईस्ट में लोकेटेड है लेकिन नॉर्थ साइड में। ये लाइट ग्रीन कलर से शेड किया हुआ क्षेत्र जो है ये प्लेन रीजन है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर का होना पॉसिबल है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, हमारे राजस्थान में हमें प्लेन भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो सबसे आखिरी और पांचवा बॉक्स है वो पिंक कलर के शेड से है और इसमें लिखा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। बच्चों ये क्षेत्र मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर है और शायद इसी वजह से ये पठारी क्षेत्र में काउंट होता है। तो राजस्थान का ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन जो कि साउथ में लोकेटेड है वो एक प्लेट्यूज का एरिया है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये मैप अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे हम जब कभी भी इन सभी प्रदेशों को रेफर करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि ये हमारे मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। तो चलिए अब हम आगे की जो हमने रीडिंग की है उसको समझने का काम शुरू करते हैं। तो बच्चों हमने अभी तक पढ़ा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को और हमने मैप में भी देखा कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो हमारे इस पैराग्राफ की रीडिंग से हमें ये पता चलता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो हमारे राजस्थान के मैक्सिमम एरिया को कवर करता है। इसे तीन समांतर पेटियों में डिवाइड कर सकते हैं जिसको हम मरुस्थली, बांगर और राही के नाम से जानते हैं। और ये तीनों पेटियां पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत हैं। और इन डेजर्ट्स में बच्चों बालुका के स्तूप बहुत सारे पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई एरिया डेजर्ट है, मरुस्थल है, तो वहां पर बालू का होना आम बात है। और बालू के साथ साथ अगर वहां पर स्तूपों का निर्माण हो जाए तो उसको हम कहते हैं बालुका स्तूप। अगर आपको याद होगा तो हमने सिक्स क्लास की हिस्ट्री में स्तूपों के बारे में पढ़ा था कि स्तूपों का शेप कैसा होता है, सेमी सर्कुलर होता है। वैसे हिस्टोरिकली स्तूप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे ही मरुस्थल में बालुका के जो स्तूप हैं, इस क्षेत्र में उन स्तूपों की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बांगर का क्षेत्र भी पाया जाता है जहाँ पर रेतीली मिट्टी के मैदान पाए जाते हैं, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें रेत यानी बालू की संख्या ज़्यादा होती है उसको हम रेतीली मिट्टी कहते हैं। बांगर का क्षेत्र उन रेतीली मिट्टी से भरा होता है और यहाँ पर राही बाढ़ के यानी जो नदियाँ बाढ़ के रूप में डिपॉजिट्स करती हैं यहाँ पर उसको हम राही बाढ़ के मैदान कहते हैं। तो उनके मैदान भी यहाँ पर पाए जाते हैं।
इसकी औसत ऊंचाई यानी एवरेज हाइट होती है बच्चों 300 मीटर। और अगर हम इसके ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि वेस्टर्न डेजर्ट्स का जो रीजन है उसके पूर्वी सीमा पर 25 सेंटीमीटर की वर्षा यानी रेनफॉल होती है। और इस क्षेत्र में एक ऐसी स्पेशल चीज पाई जाती है बच्चों जिसको हम घोरे के नाम से जानते हैं। अब आप सभी हमें बताइए कि घोरे हम किसको कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ घोरे बालू की पहाड़ियों का एक अच्छा सा नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घोरे कहाँ पाए जाते हैं तो ये हमारे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। बच्चों वैसे तो ये एक मरुस्थल यानी डेजर्ट रीजन है जहां पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक नहर की परियोजना शुरू हुई यानी कि नहर का निर्माण हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर हल्का फुल्का जो एग्रीकल्चर था वो ग्रो होने लग गया। और आपसे ये नहर का नाम पूछा जाएगा यानी कि इस नहर का नाम याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंदिरा गांधी नहर के आने से यहाँ की जो चाल चलन थी यहाँ की इकोलॉजी थी उसमें बहुत चेंजेस भी आए। तो बच्चों ये हुआ हमारा डिस्कशन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों पर। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सेकेंड लैंडफॉर्म यानी कि अर्ध शुष्क प्रदेश, इसका मतलब है सेमी ड्राई रीजन्स। तो इसमें लिखा है यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है। औसत ऊंचाई 450 मीटर है। पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। इसके अंतर्गत पाली, जालौर, सीकर, जोधपुर, झुंझुनू, चुरू व हनुमानगढ़ के भाग आते हैं। इसका कुछ भाग आंतरिक अपवाह यानी प्रवाह मार्ग का क्षेत्र है। इसे राजस्थान में बांगड़ भी कहा जाता है। इसके उप प्रदेश लूनी बेसिन, शेखावाटी भाग, नागौरी उच्च भूमि व घग्गर मैदान है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं अपने राजस्थान के उस क्षेत्र की जो है सेमी ड्राई। इसका मतलब कि एक बार आपको फिर से मैप में देखना होगा और अगर आप मैप में देखेंगे तो जो स्काई ब्लू कलर का क्षेत्र है यानी वो रीजन जिसको स्काई ब्लू कलर से शेड किया गया है वो कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश यानी सेमी ड्राई रीजन। और ये हमारे अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में लोकेटेड है। ये क्षेत्र उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिणी पश्चिमी तक फैला हुआ है जिसकी औसत ऊंचाई यानी एवरेज हाइट है 450 मीटर और इसकी पश्चिमी सीमा पर 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। बच्चों आप समझ लीजिए कि 25 सेंटीमीटर की वर्षा हमारे राजस्थान में एवरेज पाई जाती है और इसी वजह से यहाँ पर डेजर्ट का रीजन हमेशा बरकरार रहता है। इसके बाद इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं यानी जो जिले आते हैं चलिए एक बार उन पर नज़र डालते हैं। तो बच्चों अर्ध शुष्क प्रदेशों में यानी सेमी ड्राइड रीजन्स में पाली, जालौर, सीकर, जोधपुर, झुंझुनू, चुरू व हनुमानगढ़ के भाग आते हैं। अब आप सभी बताइए कि ये सभी क्षेत्र क्या आपके क्षेत्र में आते हैं या फिर आप में से कौन कौन से बच्चे इन सभी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। बच्चों इसका जो कुछ भाग है यानी अर्ध शुष्क प्रदेश के जो कुछ रीजन्स हैं, यहाँ पर अपवाह का क्षेत्र है। इसका मतलब नदी यहाँ से बहती है और इसी वजह से यहाँ पर अपवाह का क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम राजस्थानी भाषा में बांगड़ कहते हैं। बच्चों इसके उप प्रदेश में लूनी बेसिन आती है, शेखावटी भाग, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर के मैदान आते हैं। तो ये हुआ हमारा डिस्कशन अर्ध शुष्क प्रदेशों का, और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे अपने अरावली प्रदेशों पर, जिसमें लिखा है अरावली को आड़ा वाला पहाड़ भी कहा जाता है। यह दिल्ली से गुजरात के पालनपुर कस्बे में खेड़ ब्रह्मा तक 692 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। सिरोही जिले में माउंट आबू के पास गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च 1722 मीटर ऊंची चोटी है। जेम्स कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है। यह हिमालय व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। इसे उत्तर पूर्वी पहाड़ी, मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियों या भोराट पठार तथा आबू पर्वत उप विभागों में बांटा गया है। बच्चों इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अरावली को पहले एक अलग पर्वत के नाम से जाना जाता था। इवन आज भी राजस्थान में अरावली पर्वत के लिए एक विशेष नाम का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप सभी को पता है कि वो विशेष नाम क्या है? बच्चों वो विशेष नाम है आड़ा वाला पहाड़। तो इसका मतलब अरावली को आड़ा वाला पहाड़ भी कहा जाता है। ये दिल्ली से लेकर के गुजरात के पालनपुर कस्बे में खेड़ ब्रह्मा तक फैला हुआ है। और अगर इसकी लंबाई यानी कि लेंथ की बात करें तो बच्चों इसकी लेंथ है 692 किलोमीटर्स। दिल्ली में रिज करके फॉरेस्ट पाया जाता है। अगर कोई नॉर्थ कैंपस में पढ़ता है तो वहाँ पर रिज फॉरेस्ट है, वहाँ पर आप अरावली के छोटे छोटे पार्ट्स को देख सकते हैं, क्योंकि रिज का जो रीजन है बच्चों वहाँ पर अरावली पूरी फैली हुई है। और अरावली पर्वत हमारे विश्व की यानी वर्ल्ड के एंशियंट माउंटेन्स एंशियंट हिल्स की श्रेणियों में से एक है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तक कम होती जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप साउथ वेस्ट से अरावली पर्वत पर चलना शुरू करेंगे तो बच्चों इसकी चौड़ाई आपको महसूस होगी कि धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। और वैसे ही एक सिरोही नाम का जिला है, वहाँ पर माउंट आबू के पास गुरु शिखर करके एक चोटी है। जैसे कि हिमालय में भी बहुत सारी चोटियाँ हैं, वैसे ही यहाँ अरावली पर्वत में भी काफ़ी सारी चोटियाँ हैं, जिसमें से प्रमुख चोटी है माउंट आबू के पास गुरु शिखर, और वो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर्स। एक आदमी थे बच्चों जिनका नाम था जेम्स कर्नल टॉड। जेम्स कर्नल टॉड ने अरावली के माउंट आबू के पास गुरु शिखर को संतों का शिखर का नाम दिया था, यानी कि
गुरु शिखर एक और नाम से जानी जाती है जिसको हम संतों का शिखर कहते हैं। और ये नाम किसने दिया था? तो बच्चों ये नाम जेम्स कर्नल टॉड ने दिया था। और ये हिमालय पर्वत जो हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है से लेकर के नीलगिरी पर्वत, ये भी ऊंचे पर्वतों में काउंट होता है, लेकिन ये साउथ इंडिया में है। तो नॉर्थ के हिमालय से लेकर के साउथ के नीलगिरी के बीच में सबसे जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर चोटी मानी जाती है। इसे उत्तर पूर्वी पहाड़ी, मध्य अरावली, मेयाड़ की पहाड़ियों या भोराट पठार तथा आबू पर्वत उप विभागों में बांटा गया है। कहने का मतलब है कि हम अरावली पर्वत को कई भाग में बांट सकते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी पहाड़ी, मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियां या भोराट पठार और आबू पर्वत। तो बच्चों ये हुई हमारी जानकारी अरावली प्रदेशों के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रदेश पर जिसका नाम है पूर्वी मैदान प्रदेश। और इसके अंतर्गत लिखा है यह राज्य के पूर्वी भाग में फैला है। इसमें प्रमुखतः चंबल बेसिन की निम्न भूमि, बनास व माही बेसिन शामिल हैं। चंबल बेसिन बाढ़ के मैदान, नदी कगार, बीहड़ व अंतः सरिताएं पाई जाती हैं। बनास बेसिन दो भागों में मालपुरा करौली मैदान व मेवाड़ मैदान में बटा हुआ है। इसके मध्य माही मैदान को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। माही व बनास यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। बच्चों अभी आपने राजस्थान के मैप में ध्यान से अगर देखा हो तो इसके ईस्टर्न रीजन्स में प्लेन एरिया है हमने बात किया, और क्योंकि उत्तर प्रदेश भी एक प्लेन रीजन में काउंट होता है और राजस्थान का ईस्टर्न पोर्शन हमारे उत्तर प्रदेश से टच करता है और इसी वजह से यहाँ के रीजन्स में सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो इससे ये तो बिल्कुल क्लियर है कि राजस्थान के पूर्वी भाग में यानी कि ईस्टर्न रीजन्स में मैदान जिसको हम इंग्लिश में प्लेन कहते हैं मौजूद है। और यहाँ पर मेनली चंबल बेसिन पाई जाती है और इसके साथ साथ बनास और माही, ये दोनों नदियों का नाम है, इनकी बेसिन भी पाई जाती हैं। अब बेसिन का फॉर्मेशन कैसे होता है या बेसिन क्या होता है ये आपको बाद की क्लासेस में पता चलेगा। अभी के लिए आप इम्पॉर्टेंट टर्म्स में ये नोट करिए कि राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में चंबल और बनास और माही इन तीनों नदियों का बेसिन शामिल है। चंबल बेसिन बाढ़ के मैदान, नदी कगार, बीहड़ और अंतः सरिताएं पाई जाती हैं। और अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने बनास जो बेसिन है इसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो है मेवाड़ के मैदान यानी वो क्षेत्र जो मेवाड़ से लगे हुए हैं, इसको हम बनास बेसिन का पहला पार्ट कहते हैं। दूसरा है मालपुरा करौली मैदान यानी वो क्षेत्र जो मालपुरा करौली के आसपास में आता है। तो बनास नदी इन दोनों क्षेत्रों के बीच में या इनके अगल बगल में फ्लो करती है और इसी के बीच में माही नाम की एक छोटी सी नदी भी बहती है। और माही के इर्द गिर्द में जो मैदान है इसको हम माही मैदान के नाम से जानते हैं और इसी माही मैदान को हम छप्पन का मैदान भी कहते हैं। और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में माही और बनास दो प्रमुख नदियां हैं। तो ये हमने देखा अपने चौथे पॉइंट जिसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अभी हम देखेंगे अपना अगला पॉइंट यानी कि फिफ्थ पॉइंट, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि है पेज नंबर 123 पर, और इसमें लिखा है इसे हड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ जिलों में विस्तृत है। यहाँ काली उपजाऊ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इस क्षेत्र में चंबल प्रमुख नदी है। चंबल पर भैंस रोड गढ़ के निकट प्रसिद्ध चुलिया जलप्रपात है। भैंस रोड गढ़ व बिजौलिया के बीच के पठारी भाग को ऊपर माल कहा जाता है। चंबल व इसकी सहायक नदियों यथा काली, सिंध व पार्वती से बारा व कोटा में कांपीय बेसिन का निर्माण हुआ है। इस भाग में मुकंदरा व बूंदी पहाड़ियां स्थित हैं। तो अभी हमने रीड किया अपने राजस्थान के सदर्न ईस्ट पठारी प्रदेशों को, यानी प्लेटियूस के रीजन्स को, और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस क्षेत्र के वो हमारे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और आप सभी को पता होगा बच्चों कि मध्य प्रदेश को हम प्लेटियूस में काउंट करते हैं, और इसी वजह से राजस्थान के साउथ ईस्ट पोर्शन में हमारे एमपी से सिमिलर रीजन पाए जाते हैं। इसके बाद हम इसी क्षेत्र को एक नाम से जानते हैं, वो नाम है हाड़ौती पठार, यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान को हम हाड़ौती पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जिले विस्तृत हैं, जैसे कि बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ इत्यादि। और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत काली मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से उपजाऊ यानी कि फर्टाइल होती है। तो हमने वैसे भी पहले पढ़ा है बच्चों कि प्लेटियू रीजन को, क्योंकि ये वॉल्केनिक फॉर्मेशन से बनता है, यानी कि ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसके फैलने से पठार का निर्माण होता है, और इसी वजह से पठारों की मृदा यानी यहाँ की मिट्टी काली होती है। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पठारी प्रदेश हैं तो वहाँ की मिट्टी भी काली होगी। काली है तो वो उपजाऊ होगी। तीसरा, उपजाऊ है तो वहाँ पर कॉटन यानी कि रुई की खेती, कपास की खेती अधिक होती होगी। लेकिन कपास के लिए रेनफॉल भी अच्छा खासा चाहिए, तो इसी वजह से राजस्थान में कपास उतने अधिक मात्रा में नहीं होता है, लेकिन यहाँ की मिट्टी काली और उपजाऊ जरूर है। यहाँ एक बहुत प्रमुख नदी बहती है और उस नदी पर एक जलप्रपात यानी कि वॉटरफॉल पाया जाता है। उस नदी को हम चंबल के नाम से जानते हैं और इस जलप्रपात को हम चुलिया जलप्रपात के नाम से जानते हैं। बच्चों, भैंस रोड गढ़ और बिचौलिया के बीच में जो प्लेट्यू पाया जाता है उसको हम ऊपर माल कहते हैं। चंबल और इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसको हम काली, सिंध व पार्वती से बारा व कोटा के कांपीय बेसिन का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब है कि सहायक नदियां भी बहुत सारे बेसिनों का निर्माण करती हैं। और बच्चों, इसी भाग में बहुत सारी पहाड़ियां भी स्थित हैं, जिसमें से मुख्य पहाड़ियां हैं मुकंदरा व बूंदी की पहाड़ियां। तो ये हुई हमारी जानकारी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पर, और इसी पॉइंट के साथ हमने कवर किया अपने राजस्थान के वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल राजस्थान को। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है, और देखिए ना टाइम भी हमारा यहीं खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप घर जा करके चैप्टर को रिवाइज करिए, मैप को बढ़िया से फॉलो करिए, और फिर जितनी एक्टिविटीज मैंने डिस्कस की आपके साथ उसको ध्यान से सुनिए। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप अपने टीचर्स को बेहिचक कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।